हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव फीडबैक जो है आपका सबका बहुत फ़ायदेमंद होता है, और बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे महसूस करें कि आप अल्लाह ताला के घर मेहमान है ना। आप में से कोई हज उमरा कर चुके हैं, जा चुके हैं, वहाँ फीलिंग्स आती हैं जाके? आती है ना। आपको यहाँ भी ऐसे ही अपने आप को फील कराना होगा कि हम अल्लाह के मेहमान हैं इंशाल्लाह ताला। सब लोग आ गए, ये मेरे वाले पहली इंस्ट्रक्शन भूल गए हैं कि लब्बाई के दौरान सारे लोग यहाँ सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि अभी तो हम रिलैक्स हैं। अभी आपको ये भी बता दूं कि ज़ाहिर है कि आपको सीरत कराई जा रही है, और इसको आप अपना अगर अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जब हमारा असल कुरान का सिलसिला पाक सारा शुरू होगा, तो उस दौरान फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, और आपको रिलैक्स लग रहा है ना। अभी कोई कोर्स मुश्किल तो नहीं है ना। अभी इंशाल्लाह एक सेशन और आपके साथ लेके फिर आपको थोड़ी सी ग्रुपिंग का तजर्बा करवाते हैं, और अभी आप सब कुछ सीख रहे हैं, घबराए नहीं। सीखने वाला दिल और समझने के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, दिल में दुरूशरीफ़ पढ़ें और दुआ करें कि हम अल्लाह के नबी के बारे में जो बातें पढ़ सुन रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में भी आने लग जाए। शुरू करते हैं दूसरा सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सीरत नबी के सिलसिले में अब हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और कुछ बातें आपकी नबूवत के आगाज़ की। मेरी इन बातों को सुनते वक्त अगर आप लोग छोटे छोटे नोट्स लेते जाए ना, तो आप देखिएगा कि आपके पास इतना एक छोटा सा बुकलेट तैयार हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरा का। कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ नहीं, कुछ बात में आप बुक से जाके टैली कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। क्योंकि आप देखिए कि सीरत का मौजू जो है ना, एक ऐसे बाग की तरह है कि जिसमें हमेशा बहार रहती है, और इसमें जो भी फूल आप चुनेंगे ना, उसकी खुशबू ज़रूर आपको महसूस होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी तवज्जो कब भटक गई, आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। तो कोशिश करें कि आपने इस बाग के हर फूल को चुनना है और उसको नोट करना है। अभी तक जो बात हमने की वो क्या थी कि सीरत पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, मकासिद क्या हैं, सीरत को सीरत क्यों कहते हैं। हुलिया मुबारक हमने देखा इमाम इब्ने हज़म की ज़ुबान से और उम्मे माबत के नाम से। अब हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, थोड़ी सी बातें आपके बड़ों की। क्योंकि आप देखिए कि इंसानी नाते से हम सब भी अपने ख़ानदानों को बड़ी अहमियत देते हैं, बल्कि ज़ात बिरादरी का बुत है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो लोग बड़े शौक से अपने पीछे असलाफ तक जाते हैं, मैं फ़लाँ की बेटी हूँ, उसकी पोती हूँ, उसकी बहू हूँ, लाइक दिस। ये हमारे अंदर है। तो थोड़ा सा सिर्फ चीता चीता बातें आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा और उसके पीछे कोई हिकमत है, क्योंकि कुछ नाम हमने शुरू से सुने हुए हैं अल्लाह के नबी के बड़ों के, तो आज इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे थोड़ा सा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा, इसको याद करना भी हमारे असलाफ की रिवायत रही है। जिससे भी मोहब्बत होती है ना, इंसान उसके ऊपर वालों को भी जानता है। जैसे बात जब कभी दो लोग बैठे हों, किसी एक गांव के लोग कहीं मिल जाए, तो वो पूरी कड़ी जोड़ लेते हैं। अच्छा, आप उसकी बेटी हैं, उसकी बहू हैं, आप उधर हैं, उसके उसके, तो अच्छा लगता है, मोहब्बत का इजहार होता है, दोस्तियाँ निकल आती हैं, रिश्तेदारियाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लम के नाम से अगर ऊपर चले, तो आपका नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप का नाम अब्दुल्ला था। आप इस तरह लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, दादा थे आपके। बिन हाशिम, हाशिम आपके परदादा थे। बिन अब्दे मुनाफ, बिन कुसई, बिन कल्लाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लवी, बिन गालिब, बिन फाहर, बिन मालिक, बिन नज़र, बिन कनाना, बिन हुज़ैमा, बिन मुद्रिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नज़ार, बिन मात, बिन अदनान, और अदनान से ऊपर है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये जितने बिन हैं ना, ये उतनी पूछते थी। गोया के क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लम का ताल्लुक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। इनके बीच में कितनी पुश्तें गुजरी, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अगला पॉइंट डालिए, ऐसे बुलेट पॉइंट्स डाल के ना, तो इन्फॉर्मेशन जमा करें। ये जो अभी हमने देखा नसब नामा, ये आपके बाप की तरफ से था, जिसको आप कहें कि नबी सल्लम के दिदियाल, आप थोड़ी सी ननिहाल को अगर देखना चाहें तो नबी सल्लम की माँ का नाम आमिना बीबी था, आपके नाना का नाम वहब था, पर नाना का नाम अब्दे मुनाफ था, फिर उसके बाद पर के ऊपर अगला नसब चढ़ता है तो बिन जोहरा बिन कल्लाब थे। ठीक है, तो ये वही कल्लाब है जिनका भी कुसई बिन कल्लाब में हमने नाम सुना, जो बाप की तरफ से भी आपके नसब में आते हैं। इनका नाम कहते हैं कि उरवा था या हकीम था, कुत्तों के जरिए अक्सर शिकार खेलते थे, तो उस नस्बत से इनका नाम कल्लाब हो गया। अरबी में कल्ब कुत्ते को कहते हैं। ठीक है, तो शिकार अरबों की गुट्टी में पड़ा हुआ था, तो कुत्तों के शिकार की वजह से आपके ये परदादा या परनाना उस नस्ब में जो भी थे इनको कल्लाब कहा जाने लगा। फिर अगला सवाल है कि आपका कबीला कौन सा था। जैसे अब आपकी हमारी जातें हमने बनाई हुई है ना, कुछ हैं भी कुछ हमने ज़्यादा ही बना ली हैं, लेकिन यह है कि आपका कबीला कुरैश था सबसे पहले, पूरे अरब का सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। ये कुरैश जो थे असल में फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन कनाना का लकब था, इसी वजह से फिर इनकी औलाद इसी नस्बत से मशहूर हो गई। बड़ा मारूफ कबीला था, सरदारी इस कबीले के हाथ में रहती थी, कोसई को एक ख़ास मुकाम हासिल था जिसकी वजह से इस नाम पे ये चीज़ चलती गई। नाम इनका जैद था। बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के कबीले अजरा के अंदर आके जा बसे, वहीं पले बढ़े, जवान हुए तो मक्का में आ गए। इनको ये खूबी मिली कि खाना काबा के मुतवल्ली करार दिए गए। मुतवल्ली क्या होता है, टेक केयरर आज की ज़ुबान में। खाना काबा से मोहब्बत से सब करते थे, और ये जहन में आप रखिए कि ये सब मुसलमान लोग थे, बिगाड़ आ गया था इसीलिए हम इनको मुशरिकीने मक्का कहते हैं। लेकिन यह है कि इनको खाना काबा के मुतवल्ली बनने का फ़ायदा हुआ। कबीला कुरैश का पहला शख्स था जिसको काबा का मुतवल्ली करार दिया गया। चाबी इनके हाथ में होती थी खाना काबा की, जिसके लिए चाहते जब चाहते खाना काबा का दरवाज़ा खोल देते। ये कॉर्नर थी, किसी को किसी जगह की चाबी देना क्या होता है, एतमाद भी होता है और इज्जत भी होती है। हम ट्रस्ट करते हैं जिस पे, उसको चाबियां दे देते हैं, और अल्लाह के घर की चाबी, ये तो बहुत बड़ी ऑनर थी। यानी यहाँ से आप ये समझिए कि अल्लाह के नबी आला ख़ानदान से थे, कोई गिरे पड़े ख़ानदान से नहीं थे। फिर हाजियों की मेज़बानी का तरीका भी इसी ख़ानदान से शुरू हुआ। कहते हैं कि हज के दिनों में बहुत बड़े बड़े खाने तैयार करवाते, चमड़े के बड़े बड़े हौज़ होते जिसमें खजूर, किशमिश, शहद, शरबत बनवा के हाजियों को पेश करते। आज भी अगर अल्लाह आपको ले जाए तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। रमज़ान में तो एक्सट्रीम हो जाती है, पूरे पूरे घर के अफराद खाना लोगों को जाके खाने खिलाते, इफ्तारियां सहरियां बांटते हैं। तो ये चीज़ पीछे से चलती आ रही है। अरबों में जो खूबियाँ थी उसमें एक खूबी इनकी मेहमान नवाजी की भी थी। इस तरह से हाजियों की खिदमत भी करते। इसी तरह इस शख्स के ही दौर में दारुल नदवा नाम की एक बिल्डिंग बनी, आगे आप सीरत में इसका नाम सुनेंगे, तो आज ही नोट कर लें कि घर बना था, गोया कि आप कह लें आज का पार्लियामेंट हाउस था। कुरैश की जो सारी इज्तमाही एक्टिविटीज़ होती थी, सरगर्मियाँ, वो वहाँ पे होती थी, शादी वगैरह की रस्में उधर होती थी। इसी तरह कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी। यानी ये बहुत एक उनका ट्रेडिशन था कि जब कोई लड़ने के लिए जाता था तो उसको झंडे को पहले उसके हाथ पे जाके बांधते थे। गोया कि आप कह लीजिए कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी थी, करीम भी था, अक्लमंद भी था। और सबसे बढ़ के ये कि कुरैश के लोग इसकी बात बड़ी खुशी से मानते थे। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है किसी की कि लोग उसकी बात भी माने और खुश भी रहें। अगर हम किसी को बात कहें और अगला बात मान ले, खुश ना हो, तो ये नाकामी की अलामत होती है। ठीक है, तो ये आपके कबीले का थोड़ा सा तारुफ था। थोड़ी सी बातें आपके ख़ानदान, कबीले के बाद ख़ानदान है। अरबों में आपको पता है कि क्लोज़ क्लोज़ होते हुए आती हैं, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ लफ्ज़ है ना, बरादरी, कबीला, ज़ात, इस तरह अरबों में भी थी। तो अगर आप देखें कि आपका ख़ानदान क्या था, तो हाशमी ख़ानदान था आपका, और आपके परदादा हाशिम से नस्बत जुड़ रही थी। हाजियों का पानी भी पिलाते थे, हाजियों को चूँकि मेज़बानी करते थे कुसई, उसके बाद यही काम आगे उनकी नस्लों में आता गया। और हाशिम के बारे में कहते हैं कि ये इतने मेहमान नवाज थे कि रोटियों को तोड़ते, गोश्त के शोरबे में भिगोते और मेहमानों को खिलाते। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आज के दौर में एक बहुत पौष दावत हो। अरबों में इतना गोश्त और खाना नहीं पकता था, खजूर और इस तरह की ठंडा खाना खाते थे, लेकिन कहते हैं कि ये हाशिम इतने मेहमान नवाज थे कि रोटियां तोड़ तोड़ के शोरबे में भिगोते और लोगों के लिए छोड़ देते। उससे इनका नाम हाशिम हुआ। हाशिम कहते हैं तोड़ने को, हाशिम तोड़ने वाला। किस चीज़ को तोड़ते थे? रोटियों को तोड़ते थे, और बिल्कुल जैसे वो आप कहते हैं ना, सखावत करते थे। इसीलिए इनको सरदार माना जाता था। पता क्या चला कि जो दूसरों को खिलाता है, जो देने वाला होता है, अल्लाह उसको सरदार बना देता है। इसका नाम असल में अमर था, अमर। आप अगर लफ्ज़ कहीं उमरों पढ़े ना उर्दू के नाते से, तो समझ लीजिए कि ये अमर है। आइन मीम रा वो है। कुरैश जो नबी सल्लम का ख़ानदान था, इनका पेशा तिजारत थी, इसलिए आज भी बिजनेस पसंदीदा है नौकरी करने से, क्योंकि नौकरी में कई चीज़ें मजबूरियों के नाम पे ज़िंदगियों में दाखिल हो जाती हैं और तिजारत में चॉइस ज़्यादा होती है। हाशिम जो थे, ये दो सफ़र एक साल में करवाते थे तिजारत के नाम पर। सर्दियों में यमन की तरफ काफ़िले को भेजते और गर्मियों में शाम की तरफ। मौसम के इस बार से इसी का तذکرہ सूरत कुरैश में हम पढ़ते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف।
ठीक है, तो इस तरह से ये ख़ानदान जाता था तिजारत के लिए। जब गए तो एक मौके पे जब यसरब से गुज़रे, मक्का से शाम जाते हुए रास्ते में मदीना आता है, जिसको उस दौर में यसरब कहा जाता था, तो वहाँ इन्होंने बनू अदी ख़ानदान की एक औरत सलमा बिनते अमर से शादी की। कुछ अरसा वहाँ रहे, आगे गए फ़लस्तीन में इनका इंतकाल हो गया गज़ा के मुकाम पर। जब ये वहाँ से गए तो जो इनकी बीवी थी, अब ये कौन है आप खुद सोचेंगे भी, अल्लाह के नबी का ननिहाल शुरू हो रहा है इधर से। जब ये वहाँ गए तो जो सलमा थी वो प्रेग्नेंट थी, बाद में एक बच्चा पैदा हुआ। कुदरती तौर पे जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसके बाल सफ़ेद थे, तो सफ़ेद बालों वाले को शैब कहते हैं, शैबा। उर्दू में आप पढ़ेंगे, कुरान में भी ये आपको आगे जाके तذکرہ मिलेगा। तो उस बच्चे का नाम जब शैबा रखा गया, मदीना में ये बच्चा परवरिश पाता है। मक्का में हाशिम के ख़ानदान, बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्तियां तो थी ना, उनको पता नहीं था कि ये हमारे ही ख़ानदान का बच्चा है। समझ आई बात? मक्का का एक मर्द उठा, मदीना से गुजरते हुए मदीना की एक औरत से शादी की, फ़लस्तीन में उसका इंतकाल हो गया। उस शादी के नतीजे में वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा वहाँ था। मक्का वालों को नहीं पता कि ये हमारे ही ख़ानदान के एक मर्द का बच्चा है। अब वो फौत हो गए, ये बच्चा मदीना में पलता रहा, मक्का वालों को नहीं पता। और अरब लोग अपने हसब नसब पे बहुत मतलब फ़ख्र करते थे। 8 साल का जब ये बच्चा शैबा हो गया, तो मुतलिब जो थे नबी सल्लम के परदादा, उनको पता चला कि मदीना में हमारे ख़ानदान का एक बच्चा पल रहा है। चुनाचे उन्होंने उस बच्चे को बुलाना चाहा। जब वो उस बच्चे को वापस लेकर आए, क्योंकि अभी बाप के पास बच्चा होना चाहिए, उसके ख़ानदान का था, पहले वो ननिहाल में पल रहा था, तो उस वक्त जब वो बच्चा साथ आया मुतलिब के, तो लोगों ने समझा कि मुतलिब कोई ग़ुलाम ख़रीद के ले आए हैं, आम रिवाज था। तो उसको उन्होंने अब्दुल मुतलिब कहा। तो अब्दुल मुतलिब कौन है? अल्लाह के नबी के दादा। तो गोया कि आपको आज क्या बात पता चली, नई बात होगी शायद आपके लिए, कि अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लम के दादा थे, इनको भी अल्लाह ने मदीना की औरत के बतन से पैदा किया। 8 साल तक मदीना में रहे, फिर जब पता चला तो वापस आए, तो अब्दुल मुत्तलिब के नाम से कहलाए, और ये इनकी नस्ल से फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लम आए। अब ये आपके दादा तक हम पहुँच गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कैसे थे? बहुत खूबसूरत अजीम इंसान थे। कहते कि इनके दौर में कोई इनके लेवल का नहीं था। कुरैश के सरदार भी थे और मक्का के काफिला तिजारत के जिम्मेदार भी थे। इतनी ज़्यादा सखावत करते थे कि इनका नाम फैयाज पड़ गया, जनरस जिसको आज की जुबान में आप कहें। कहते कि इनका जो दस्तरखान था, हर वक्त मिसकीनों और गरीबों से भरा रहता। इंसान तो इंसान, चिड़ियों और जानवरों तक को रोटियां खिलाते थे। कहते हैं कि इनके लिए एक बात मारूफ क्या हो गई थी कि ज़मीन पर इंसानों और पहाड़ की चोटियों पर वहशी जानवरों और चिड़ियों को खिलाने वाला। हम अपने लिए क्या अमल लेंगे इधर? हमें शौक़ है लोगों को खाना खिलाने का, ہم کھلاتے ہیں کب؟ جب ہمارا نام ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ یہ سخاوت اللہ کے نام پہ کھلانا پلانا. تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کے نام پہ انسان کہیں کھانا کھلائے تو اس میں کوئی اپنا نام یا اپنی تعریفیں اور اپنی چدراہٹ نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو ایک اور اللہ تعالیٰ نے شرف بھی دیا اللہ کے نبی کے دادا کو, اور وہ کیا کہ زمزم کا کنواں جو تھا کھودنے کا فخر انہی کو حاصل ہوا. زمزم شروع سے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل قصہ پڑھتے ہیں, آگے آئے گی تھوڑی سی اس پہ بھی بات, تو اس وقت سے تھا. لیکن قبیلہ جرہم جو اس دور میں تھا, جب مکہ سے اس کو نکالا گیا تو انہوں نے چشمہ بند کر دیا. آپ یہ کہہ لیے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا, پتہ نہیں چلتا تھا کہ زمزم کا چشمہ کدھر تھا. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس چشمے کی جگہ دکھائی. بڑا دلچسپ ہے, لیکن اب اس وقت چونکہ ہم ڈیٹیلز نہیں کر رہے نا, تو بس یہ چنکس چھوٹے چھوٹے لیتے جائیں کہ کیسے اللہ اپنے کام کرتے ہیں. خواب میں ان کو ایک بدلی دکھائی گئی تھی کہ وہ ایک جگہ پہ گھوم رہی ہے, اور بعد میں بالکل جب اس بدلی کے نیچے سے زمین کھودی گئی تو وہاں سے دوبارہ چشمہ زمزم کا نکل آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو پھر ایسا آباد کیا کہ اب رہتی دنیا تک یہ انسانوں کے فائدے کے لیے. عبد المطلب کو ایک اور آنر بھی ملی, اور وہ کیا کہ ان کے دور میں ابرہا کے لشکروں نے حرم پر, خانہ کعبہ پر حملہ کیا. وہ کون تھے؟ آپ کہہ لیں کہ ریلیجس میٹر تھا, فرقے بازی تھی. یمن کے وہ لوگ تھے, حبشی تھے, بلیک تھے. سردار کا نام ابرہا تھا, یمن پر قابض بھی تھا اور وہاں کا حکمران تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ پہ بہت شوق سے جاتے ہیں, اس نے بھی ایک حرم بنایا اپنا یمن میں, اور دل چاہ کے لوگ ادھر ہیں. لیکن دیکھیے کہ باطل چیزیں جتنی مرضی بن جائیں وہ پنپتی نہیں ہے, حق حق ہوتا ہے. جیسے یہ ایسی ہے کہ ایک اصلی چیز ہوتی ہے ایک نقلی. آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے نا, لوگ اس کی نقل میں بہت سارے کام شروع کریں گے, لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ جانے والے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں, تو چلو نقلی کی بجائے اصلی چیز لے لیتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ میں بڑے شوق سے آتے ہیں, میرے حرم میں نہیں آتے, تو حسد کے مارے یہ حملہ کرنے کے لیے نکلا. 60,000 فوجیوں کا لشکر لیا جو اونٹوں پہ سوار تھے کہ جا کے میں اس حرم کو ختم ہی کر دوں. دیکھیے یہ بھی ایک تعصب کی بات ہے نا. آج مسلمان فرقے بازی کے نام پہ دوسروں کی مسجدوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور غلط باتیں کہتے ہیں. اپنے کام کی کوالٹی نہیں ٹھیک کریں گے, دوسرے سے حسد کے مارے غلط باتیں باہر پھیلا دیں گے. اسی طرح انہوں نے بھی کیا, لیکن اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی کہ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں یہ لشکر پہنچا تو اونٹوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ اونٹوں کو کھینچتے, اونٹ پچھلی طرف جاتے, اونٹ یہ آگے بھیجتے. عبد المطلب چونکہ اس وقت سردار تھے, ان پہ بڑی ذمہ داری آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا سب پہاڑوں میں چلو, اور جا کے اللہ سے کہہ دیا, دعا مانگی, اللہ میں اپنے بال بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, تو اپنے گھر کو سنبھال. لوگوں نے برا بنایا, بلکہ عبد المطلب اس لشکر والوں کے پاس کچھ اپنے تجارتی کے سامان کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے آپ بہت بڑے سردار ہیں, آپ آئیں گے ہم سے حرم کی اور خانہ کعبہ کی باتیں کریں گے, کچھ نیگوسیشن کریں, آپ تو اپنی ذاتی باتوں پہ آ گئے, آپ نے تو بڑی گری ہوئی بات کی ہے کہ اجتماعی کام کو چھوڑ کے انفرادی فائدے نقصان کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس پہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میری چیزیں نا مجھے واپس کرو, یہ گھر بھی اللہ کا ہے اور حرم بھی وہ خود تم سے نپٹے گا. یعنی انہوں نے اپنا معاملہ پورا اللہ پہ ڈال دیا. جب وہ وہاں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیلیں بھیجیں اور انہوں نے تھوڑی دیر میں اس لشکر کو بھوس کی طرح کر دیا. اس پہ سورت آپ پڑھتے ہیں, سورت الفیل.
لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
پوری صورت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کر دیا, بالکل کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 50 یعنی 50 یا 55 یعنی 55 دن پہلے ہوا. عرب لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کے کیلنڈر اور آج کی زبان میں گوگلز اور یاہو کیلنڈرز تو نہیں تھے. کیسے یاد کرتے تھے چیزوں کو؟ کسی خاص واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بھی, یعنی آج بھی ہمارے کچھ نانیاں دادیاں کسی چیز کو یاد کریں نا تو کہتی ہیں اچھا وہ جب پاکستان بنا تھا نا پھر تم پیدا ہوئی تھی, وہ صدر ایوب جب صدر بنا تھا نا تو میرا یہ بیٹا ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ لکھت پڑھت نہیں کر پاتے وہ واقعات سے لیتے ہیں. تو عربوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تاریخ تو اس وقت لکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس لیے غور سے سنیے گا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی کی وفات کا دن تو بہت سب کو پتہ ہے، یقینی بات ہے، کیونکہ اتنے صحابی تھے، آپ کے اتنے چاہنے والے تھے، آپ ایک لیڈر بن چکے تھے، مدینہ کے حکمران تھے، مکہ کے فاتح بن چکے تھے۔ لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی کو پتہ تھوڑی تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے کل نبی بنے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے کہ عربوں میں برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ وہ سارے خاندان کی برتھ ڈیز لکھتے پھریں، کیونکہ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے اور کیک کاٹنے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتہ۔ دو باتوں میں ایک بات زیادہ معروف ہے کہ وہ ربیع الاول تھا، یہ تو سچ ہے، پیر کا دن تھا، یہ بھی سچ ہے، لیکن یا وہ 9 تھی یا 12 تھی۔ اور اگر آپ عیسوی کیلنڈر کو، جو سولر کیلنڈر آج ہمارے پاس ہے، اس کو جا کے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے نا، تو وہ پیر کا دن جو تھا اس سال 9 ربیع الاول کو آتا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں 12 ربیع الاول کو کتنے اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھ کے ہم مناتے ہیں۔ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جیسی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی لوگ مناتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اصل میں شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی کراتا در پردہ، اور بیچارے محبت کے مارے بھولے والے ہمارے مسلمان یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ یوم ولادت بھی، اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یوم وفات ہے، پھر خوشی کس بات کی؟ بالفرض 12 ربیع الاول کو ہم مان ہی لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی تو آپ کا یوم ولادت اور اسی دن آپ فوت ہوئے، تو بتائیں غم خوشی پہ بھاری ہوتا ہے یا خوشی غم پہ؟ شادی والے گھر میں میت ہو جائے تو شادی کی خوشی ہوگی یا غم کی؟ تو یہ چھوٹی سی ایک عقل کی بات آتی ہے عقل میں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بہار کا موسم تھا، شب بنی ہاشم کے گھاٹی تھی، اس میں آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت عام الفیل کی وجہ سے اس سال کو جب یاد رکھا جاتا ہے، تو اگر آپ آج کے عیسوی کیلنڈر کے ناطے سے دیکھیں تو 571 عیسوی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ سے اٹھائے جانے کے 571 سال، 550 سال ہو گئے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہاں آپ کو ایک چیز ملی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے بنی اسماعیل کے، دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، تو تقریباً 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، اتنے اندھیرے تھے اس دنیا میں۔